ఋషిపోవాచ దృత్రేహ పేత్రయోక వినాశక్రీడభేద సపాలాయుభవం సద్యో విజ్వరా నిర్వృతేంద్రియ దేవర్షి పితృభూతాని దైత్యా దేవానుగః స్వయం ప్రతిజగ్మిషధిష్ణ్యాని బ్రహ్మే శంద్రాదయస్తపః.
సుఖదేవ గోస్వామిని కహా వృత్రే హతే, వృత్రాసుర కే మారే జానే పర్ త్రయో లోకః, తీనో లోకో కే జీవ్ బినా సత్రేణ ఇంద్ర కే బినా భూరిదా, హే మహాదానీ సపాలః अपने पालकों के साथ ही निश्चित अभवान हो गए सद्य तत्काल वृत्रासुर के मरते ही विज्वरः संतापहीन निर्वृतेन्द्रियः और आनंदित मन वाले आनंदित इंद्रिय वाले. अभी हम लोग चालू करेंगे श्रीमद् भागवत कथा का अनुमोदन. छह दिन सात दिन से बहुत लोग सुनते रहते हैं तो उनकी वाणी भी सुननी चाहिए. अगर इस कथा को किस तरह से आस्वादन किए हैं और कौन कौन तथ्य पॉइंट सुनकर मन में ज्यादा घर किए, तो श्री वसुदेव दास जी नाम बोलेंगे.
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे.
वृत्रासुर जी के उद्गार हमने जो सुना, इसके बाद भागवत सुनने वालों के उद्गार सुने. सबकी यही इच्छा है कि वृत्रासुर जी का उद्गार हमारा उद्गार बन जाए. वास्तव में सबका हृदय प्रकट हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा है. तो आगे कथा का नियम है कि किसी खास प्रसंग में ही विश्राम को प्राप्त होना चाहिए. तब एक अध्याय कथा बाकी है, इसको हम लोग सुनेंगे. सुबह सुबह गोस्वामी कथा कहते हैं कि वृत्रासुर के मरने पर तीनों लोक के जितने भी जीव थे, खासकर देवता, उसे बहुत सुखी हो गए. एक को छोड़कर बिना शक्र शक्र के बिना वह इंद्र सुखी नहीं हुए और सब लोग सुखी हो गए. तो बहुत आश्चर्य की बात है, जिसका शत्रु मारा गया और जो स्वयं अपने हाथ से मारा, वह शत्रु के मारे जाने पर सुखी नहीं हुआ और दुनिया के सब लोग सुखी हो गए. एक आश्चर्य होता है सुनकर. तो श्री सुखदेव के समय कहते हैं वृत्रे हते त्रयो लोका बिना शक्रे न भूल गा सपाला है भवन शब्द विज्वरा निवृत इंद्रिया. एक इंद्र को छोड़ करके बाकी सभी लोग सुखी हो गए वृत्रासुर के मरने पर. अपने अपने नेताओं के साथ सभी जीव सुखी हो गए. यह सभी लोग से तात्पर्य है देवताओं कि जो जातियां हैं, जैसे सिद्ध गंधर्व किन्नर नाग या मनुष्य, ये सब सुखी हो गए. विज्वरा इनका ज्वर चला गया, विगत ज्वरा अभवन ज्वर चला गया. शरीर में ज्वर नहीं था उनके, मन में ज्वर था. जो चिंता और भय होता है यह मन का ज्वर है. हम लोग जो संसार में देखते हैं बहुत से लोग हैं उनको ज्वर नहीं रहता, पूजा नहीं रहता, लेकिन मन तप्त रहता है. मन में बहुत भारी फीवर रहता है, 110 डिग्री से कम नहीं रहता. शरीर तो 160 डिग्री तक सह लेता है, लेकिन मन तो 200 डिग्री में सह सकता है। ऐसा है, हमेशा चिंता करते रहते थे। तो धृतराष्ट्र की याद करके सब लोग कांप रहे थे, इतना भय छाया था, चिंता लगी हुई। धृतराष्ट्र मर गया, बस जोर समाप्त हो गया और निर्वृत इंद्रिया, उनकी इंद्रिया, उनका मन निर्वृत्त हो गया। निर्वृत्ति का अर्थ होता है आनंद, आनंद में मग्न हो गया। देवर्षि त्रिभूता दैत्या देवा निवास प्रति जज्ञ भीष्मानि ब्रह्म संग्रादयस्तत। जब वृतासु मर गए तो सभी देवता, ऋषि, पितरगण और अन्य भिज्जे और देवताओं के अनुगामी गंधर्व आदि, और यहां तक कि भगवान ब्रह्मा जी, शिव जी, ये सब लोग अपने अपने स्थान पर चले गए। इसे सिद्ध होता है कि ये लोग भी युद्ध देखने आए थे, भगवान शिव भी युद्ध देख रहे थे और ब्रह्मा जी भी। यहां से ये पता चल रहा है, युद्ध खत्म हो गया तो सब लोग बहुत सुखी हुए और चले गए। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं स्वयं प्रतिज्ञ में इंद्र से पूछ करके नहीं गए सब अपने घर। अब तो केस इंटर होगा ना, हत्या किए तो कोई पूछा नहीं। मारने के पहले तो सब लोग इंद्र की जय जयकार कर रहे थे, मारिए मारिए, आप मालिक हैं, जगत के ईश्वर हैं, इसका वध कीजिए। और खास करके ऋषि लोग बहुत उकसाए थे, वे लोग इंस्टिगेट किए थे बहुत ज्यादा। और जब मार दिया गया तो इंद्र से कोई पूछे भी नहीं कि हम जा रहे हैं घर, कम से कम पूछना चाहिए ना। तो ठीक है, हम जा रहे हैं। चुपके से सब भाग गए स्वयं। सदाशंकर स्वामी जी लिखते हैं सक्रम और पृष्ठवा स्वयं और प्रतिजन्म, शक्र से इंद्र से पूछे नहीं, अपने आप चले। कहीं भी जमात जुटती है, अभी मिलता है तो पूछना चाहिए कब जा रहे हैं। जा रहे हैं, बहुत बड़ी घटना घट चुकी है, इंद्र पर बहुत बड़ा संकट आ गया धृतराष्ट्र को मारने के बाद। इस बात को वो लोग जानते थे, लेकिन बेचारे इंद्र से बातचीत भी नहीं किए, सब अपने अपने घर चले गए। तो सब चले गए तो इंद्र भी अपने घर गए, लेकिन उनका हृदय धक-धक कर रहा था कि ये तो बहुत बड़ी ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, बहुत बड़ा ब्रह्म हत्या का पाप लगा है। धृतराष्ट्र एक ब्राह्मण थे और उस पर भी महाभागवत थे, तो अपराध से भी बड़ा अपराध इंद्र के द्वारा हो चुका है। यह अद्भुत बात है। यदि देखिए भगवान भी चाहते थे कि धृतराष्ट्र मारा जाए, उन्होंने बताया था उपाय, तथापि इंद्र पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा। तो यहां महाराज परीक्षित पूछते हैं इंद्रस्य निवृत्त रहे तुम स्विच्छा अनुभव मिले। हे सुखदेव गोस्वामी, मैं यह जानना चाहता हूं कि इंद्र के दुख का क्या कारण हुआ। जब सब लोग सुखी हो गए तो वे क्यों नहीं सुखी हुए, उनको क्या दुख था। जिनासित सुखिनो देवा हरे दुखम कुतो भवत। वृत्र के वध से जब सारे देवता सुखी हो गए तो श्री इंद्र को क्यों दुख हुआ, उनको क्या तकलीफ। तब श्री सुखदेव गोस्वामी कारण बताने के लिए प्रस्ताव कथा कह रहे हैं। वृत्र विक्रम संविघ्ना सर्वे देवा सहर्षिः तद बधायार्थे अमिंद्रम नैच्छद भीतो बृहद बधात। जब वृत्रासुर का अत्याचार सारे ब्रह्मांड में हो रहा था, उसके पराक्रम से सब लोग त्रस्त हो गए थे, तो सारे देवता एक जगह पर जुटे थे। सुखदेव गोस्वामी कथा कह रहे हैं वृत्रासुर के पराक्रम से, विक्रम से सब लोग भयभीत थे और सभी देवता और ऋषि, ऋषियों में मरीषि आदि ऋषि, सब जुट करके और इंद्र से प्रार्थना किए बारंबार कि आप वध कीजिए। कब प्रार्थना किए, जब वज्र बन गया। वज्र बनने के बाद अब ये बात आ रही है कि कौन मारेगा धृतराष्ट्र को। तो पहले तो भय था कि कौन जाएगा निकट मारने के लिए, उसी को खा जाएगा, इसलिए इंद्र आदि देवताओं में हृदय तैयार नहीं हो रहा था। परंतु सर्वे देवा, सभी देवता और सह ऋषि भी ये मिलकर के देव राजेंद्र से कहे कि आप मारिए उसको, आप समर्थ है और हथियार मिल ही गया है, वज्र मिल गया है, आप मारिए। लेकिन देव राजेंद्र ने साफ कह दिया मैं नहीं मारूंगा। क्यों नहीं मारेंगे? भी तो बृहद बधा, क्योंकि ब्राह्मण की हत्या से बहुत डर गए थे। एक बार उन्होंने एक ब्राह्मण का वध किया था, धृतराष्ट्र के भाई का, विश्वरूप का, तो उसी समय से बहुत भयभीत थे। उन्होंने साफ बता दिया चाहे कुछ भी हो दुनिया मर जाए लेकिन मैं धृतराष्ट्र को नहीं मारूंगा, मैं इतना कष्ट नहीं सहूंगा। इंद्र ने कहा, जवाब दिया देवताओं को, स्त्री भू जल दिन अंग्रेण विश्वरूप बधोद्भवम विभक्तम अनुगृहण भी वृत्र हत्याम क मार्जुन। जब मैं विश्वरूप का वध किया था तो मुझे ब्रह्म हत्या लगी थी, लेकिन चार लोगों ने मुझ पर कृपा किया और चौथाई चौथाई हिस्सा वो स्वीकार कर लिए मेरे पाप को, और तब मैं पाप से मुक्त हुआ था। स्त्री भू जल द्रिमय, स्त्रियों ने हमारे पाप को ग्रहण किया था, कृपा किया था वास्तव में देवराजेंद्र पर। पुरुष लोग सहारा नहीं दिए, इतने बड़े देवता संकट में पड़ गए थे विश्व की रक्षा के लिए, लेकिन स्त्रियां साथ दी भगवान इंद्र का। इन लोगों ने ब्रह्महत्या के चौथाई पाप को स्वीकार किया, ठीक है हम भोगेंगे। तो स्त्रियों को वर दिया था भगवान इंद्र ने खुश होकर, तो स्त्रियों ने 25% पाप लिया और भू पृथ्वी ने लिया, पृथ्वी का भी उन्होंने वरदान दिया, और जल जल ने स्वीकार किया 25% और द्रिमय वृक्षों में। तो इस तरह इंद्र का 100% पाप इनके पास चला गया। इन्होंने कृपा किया था देवराज इंद्र पर, इन्होंने ये कहते हैं विभक्तम अनुगृहणक भी, विभज्य गृहीतम इत्यादि था, मेरा पाप बांट करके इन लोगों ने ग्रहण कर लिया और आज तक के लोग भोगते हैं इस पाप को। से पृथ्वी में जो बंजर भूमि है ऊसर, वह ब्रह्महत्या स्वीकार करने के कारण हो गया। स्त्रियों को चार दिन वो ब्रह्महत्या के कारण होता है, और वृक्ष में जो निर्यास निकलता है लाशा वो ब्रह्महत्या है, और जल में बुद्विद और फेन जो है वो ब्रह्महत्या है। इसीलिए जल में बुद्विद और फेन वगैरह हटा करके तब नहाना चाहिए, पीना चाहिए। तो इस तरह से देवराजेंद्र कहते हैं कि इन चार लोगों ने कृपा करके मेरे पाप को ग्रहण किया। वृत्र हत्या को मार्जनीय है, और वृत्रासुर को मारूंगा तो ये जो मुझे पाप लगेगा तो इस पाप का सेवन मैं कहां फिर करूंगा, फिर मैं किसको पाप दूंगा, कौन भोगेगा, कोई तैयार नहीं होगा, मैं कहां इसको कौन मार्ग में शोधया, मैं कहां इसका शोधन करूंगा, कैसे शोधूंगा, इसलिए मैं नहीं मारूंगा। वज्र बन चुका था और भगवान ने भी कहा था कि इसे आप मार सकते हैं, लेकिन फिर भी देवराजेंद्र नहीं मारना चाहते थे। वास्तव में ये भी एक बहुत बड़े भक्त हैं, इसलिए ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहते थे, ये भक्त का वध नहीं करना चाहते थे। देवताओं ने कहा कि तो क्या इसी तरह से संसार त्रस्त रहे, सबको खा जाएगा वृत्रासुर, भी नहीं मारा जाएगा। देवराज ने कहा कि खा जाए चाहे कुछ भी करे हम नहीं मारेंगे, हम कैसे मारे, हमारे पाप कैसे भूलेगा। तो विशेष पदता करने महेंद्र निदम इदम अब्रुवन, इन देवता की चिंता सुन करके जो है ऋषि लोग थे ब्राह्मण जैसे मरीचि आदि सब ब्रह्मा जी के बड़े बड़े पुत्र सब जुटे, तो इन लोगों ने कहा सुनिए सुनिए कहां आप इस पाप को धोएंगे हम बता रहे हैं। याद श्याम भद्रम तो है मेधे मास में भर, हम लोग अश्वमेध यज्ञ कराएंगे आपके द्वारा, आप डरिए मत, अश्वमेध यज्ञ आपके द्वारा हम कराएंगे, हम लोग बनेंगे ऋत्विक और आप यज्ञ करेंगे, इतना सुंदर यज्ञ करेंगे कि आप वृत्रासुर की हत्या के पाप से मुक्त हो जाएंगे। ये देखिए, आप पाप कीजिए बाद में पाप हम लोग काट देंगे, ये जान बुझ करके पाप करना है। नामो बला जस सही पाप बुद्ध न विद्यते तस जमे रहे शुद्ध, पाप जरूर कट जाता है भगवान के भजन से अश्वमेध यज्ञ आदि से, लेकिन जान बुझ करके पाप किया जाए सात चीजें मारी और कट जाएगा, हम लोग अश्वमेध यज्ञ कराएंगे आपके द्वारा। और कहते हैं हर मेध है न पुरुषम परमात्मा नमीश्वरम इष्टवा नारायणम देवम मोक्ष सेतु जगत बधार। यदि आप अश्वमेध यज्ञ करेंगे और अश्वमेध यज्ञ के द्वारा परमात्मा परम पुरुष परम ईश्वर भगवान नारायण की आराधना करेंगे पूजा करेंगे तो इससे इतना पूर्ण होता है, इतना पूर्ण होता है कि पूरी दुनिया को कत्ल करके भी आप उस पाप से मुक्त हो जाएंगे। इसे योग के पाप से मुक्त होने की बात क्या है, सबको मार करके और आप उस पाप से मुक्त हो सकते हैं। श्री प्रभुपाद जी प्रत्येक लिखते हैं कि इस तरह से विलिंगली पाप करने की ये लोग प्रेरणा दे रहे हैं इसी लोग। और जिस दिन इंद्र मार देंगे वृत्रासुर को तो पूछे भी नहीं कि कैसे है, सब अपने अपने आश्रम पर चुपके से चले गए। बल्कि यह भी लोग सोचते थे कि पता न चले कि इस ऋषि ने कहा था मारने के लिए, इसने उसकी गेट किया था, सब भाग भूमिगत हो गए, सब भाग चले और आज ऐसे उकसा रहे थे मारिए मारिए हम है ना, हम यज्ञ करेंगे, उसमें यज्ञ करेंगे। हरमो भेद पुरुषम परमात्मा ईश्वरम इष्टवा नारायणम देवम मोक्ष से भी जगत बधा, जगत बधा, पूरे विश्व में जितने जीव हैं सबको मार करके भी आप उस पाप से मुक्त हो जाएंगे। अश्वमेध यज्ञ में इतनी शक्ति है क्योंकि उस यज्ञ में भगवान नारायण की आराधना होती है। भगवान के लिए कई शब्द दिया जा रहा है, पुरुषम परमात्मानम ईश्वरम नारायणम, ये भगवान के गुण है। भगवान की पूजा करेंगे ना तो भगवान तो परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परमं भगवान, अरे उनका एक नाम सारे पापों से मुक्त कर देता है, यज्ञ तो बहुत बड़ी बात हो गई। यज्ञ में तो कितना कीर्तन किया जाता है, कितना पूजन किया जाता है, कितनी कथाएं होती हैं, प्रसाद वितरण होता है, यज्ञ करने से क्यों नहीं मुक्त हो जाएंगे। कमुक्त न्याय से कह रहे हैं भगवान का केवल नाम बोलने वाला व्यक्ति कितने बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। सुनिए ये ऋषि लोग इंद्र को समझा रहे हैं, ब्रह्महा पितृहा बुग्नो मातृहा आचार्यहा भगवान स्वाद पुलकसकोपी स्वाद पुलकसको वापी शुद्धेरम जस्य कीर्तनात्। जो व्यक्ति ब्राह्मण की हत्या किया है या पिता की हत्या किया है, गाय की हत्या किया है, माता की हत्या किया है, गुरु की हत्या किया है और वह चंडाल है पुलकस है, ऐसा व्यक्ति भी शुद्धोरम जस कीर्तना भगवान के कीर्तन से शुद्ध हो जाता है, फिर यज्ञ करने से क्यों नहीं शुद्ध हो जाएगा। जो पिता की हत्या करने वाला, ब्राह्मण की हत्या करने वाला, गाय की माता की, एक ही व्यक्ति सबकी हत्या किया, ये अर्थ है। ऐसा नहीं कि अलग अलग, एक ही व्यक्ति पिता की हत्या किया है, ब्राह्मण की मां की गुरु की गाय की, वह भी भगवान का नाम बोले तो पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 उसी में जो बात कह रहे हैं वास्तव में बिल्कुल सत्य बात कह रहे हैं, लेकिन नाम पाप काट देगा इसके लिए मारा करे नाम के बल पर, यह तो अपराध है। पहले अनजान में पाप हो गया है कोई भी पाप तो भगवान के एक नाम से जा सकता है, नामाभास से जा सकता है, नाम में इतनी शक्ति। लेकिन इस तरह से नाम के बल पर किसी को पाप में लगाना, जाओ मारो 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 हम देख लेंगे, फिर भगवान का नाम जप करेंगे खूब, वृत्रासुर का वध करके आप भी मारा पकड़ करके खूब जप कीजिए, काहे को पाप लगने जाए। इसी तरह से सब लोग करने लगे, ठीक है भगवान के नाम से पाप खत्म हो जाता है तो हम ये जो निहित पाप है सब करते रहे, यह ठीक नहीं है, यह बहुत बड़ा अपराध। यह सत्य है भगवान के नाम की महिमा है, कोई पाप टिक नहीं सकता, जैसे सूर्य के उगने पर अंधकार टिक नहीं सकता है, उसी तरह से जिहवा पर भगवान का नाम आने पर पाप रह ही नहीं सकता है, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। एक श्लोक में कहा गया है कि भगवान के नाम में पाप नष्ट करने की जितनी शक्ति है किसी जीव में इतना पाप करने की शक्ति नहीं है। जैसे सूर्य भगवान में अंधकार नष्ट करने की जितनी शक्ति है, उतना हम लोगों में अंधकार बनाने की शक्ति नहीं है। सूर्य उगने वाले हो, नोटिस आ जाए कि हे मनुष्यों, पृथ्वी के सभी मनुष्यों, आप लोग अंधकार की रक्षा कीजिए, क्योंकि अंधकार का गैरी उदय ले रहा है, वो आ रहा है, तो मनुष्य क्या अंधकार बनाएंगे बताइए? किसी झोला में, बक्सा में, कार में, मोटर में वो अंधकार को बचाना चाहे, वो सूर्य के उगते ही सारा अंधकार नष्ट हो जाता है, नहीं बचा सकते हैं सब मिल करके। तो इतना पाप करने की शक्ति नहीं है जीव में जितना भगवान के नाम में पाप काटने की शक्ति है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वास्तव में जिह्वा का श्रृंगार है, आभूषण है भगवान का नाम। जिस व्यक्ति के जीव पर भगवान का नाम है, सफलता उसका चरण चुनेगी। वास्तव में वही सबसे भाग्यवान व्यक्ति है संसार में, जिसके जिह्वा पर भगवान का नाम सदा रहता है। ये अनेक शास्त्रों में बातें कही गई, फिर पाप पाप काटने की बात तो बहुत दूर है, ये तो अपने आप हो जाता है, तो नाना भाष्य हो जाता है। एक बार एक मुसलमान को सुअर मार दिया, वो हराम मार दिया, हराम मार दिया, कहते कहते मर गया, बैतूल चला गया। ये पद्म पुराण में कथा है, जंगली सुअर होते हैं ना, तो एक सुअर मार दिया उसको, तो कहते हराम मार दिया, हराम मार दिया, तो हराम कहने में राम राम आ रहा है। इसको नामाभास कहते हैं, वो सुअर के लिए हराम कह रहा है, लेकिन भगवान ने समझ लिया हे राम कह रहा है। अजानी अपने बेटा का नाम बोल रहा था नारायण, भगवान अपने चार पार्षद भेज दिए, जाओ बचाओ उसको। ये भगवान के नाम में शक्ति है। जीवन में सबसे बड़ा सौभाग्य, सफलता, सुख यही है कि भगवान का नाम बोलते रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। तो इस तरह से ऋषि लोग भगवान नाम की महिमा बता रहे हैं, किस तरह से पाप काट देता है। वास्तव में कोई व्यक्ति चाहे किसी की भी हत्या किया हो पहले अंजाम में, ब्रह्म हा पित्री हा, हा मैंने मारने वाला हत्यारा, जो ब्राह्मण का हत्यारा है, पिता की हत्या किया है, जो पिता जन्म दिया, खिलाया पिलाया, पढ़ाया लिखाया, उसे पिता का वह कितना भारी पाप है। और गोघ ने गाय की हत्या किया है, मातृहा हा जन्म देने वाली मां की हत्या किया है, आचार्य हा भगवान, जो आचार्य जीवन में श्रेय प्राप्ति के लिए विद्या दान करते हैं, ऐसे गुरु को कत्ल किया है, मारा है। कोई भी हो, चाहे चंडाल हो, पुलकस हो, सिद्धेदम जस कीर्तनाथ तमस्य मूढ़े न महामखे न श्रद्धा मुतोष्माभिष्ठ को न हत्या की सब्रह्म चराचरत्व नंद से किम खलमी ग्रहण। ऋषि लोग कहते हैं कि जिस प्रभु का नाम इस तरह से महान है, उन्हीं प्रभु की आराधना हम लोग करेंगे यज्ञ के द्वारा, धृतराष्ट्र का वध करने के द्वारा यज्ञ करेंगे। तम असमोधे न महामखे न, महायज्ञ के द्वारा भगवान की पूजा करेंगे, आराधना करेंगे। आपकी श्रद्धा है ही और हम लोग वेदज्ञ है ही, हम लोग खूब अच्छा मंत्र पढ़ेंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे। तो ऐसा यज्ञ करने पर हत्या की सब ब्रह्मचरा चरत तुम, आप ब्राह्मणों के सहित चार अचर सबकी हत्या कर देंगे, तब भी पाप से मुक्त हो जाएंगे, फिर इस खल को मारने में क्या है? इसको तो मारने में पाप लगेगा ही नहीं, किन खल निग्रह है? आपको ध्यान है किसको मारने जा रहे हैं? हम लोग खल को मारने के लिए कह रहे हैं, ये खल है ना, सारी दुनिया को खा जाएगा, बर्बाद कर देगा। देखिए ऋषि लोग किस तरह से बोल रहे हैं, सब ब्रह्म चराचरम तम, हत्या की सब ब्रह्म चराचरम तम, सब ब्रह्म का अर्थ है ब्राह्मणों के सही चौर और अचर जितने जीव हैं, कीट पतंग मनुष्य देवता वृक्ष लता आदि सबको खत्म कर देंगे आप, फिर भी भगवान का कीर्तन करके आप मुक्त हो जाएंगे। इस खल को धृतराष्ट्र को मारने पर तो आपको कोई पाप लगेगा नहीं, बेकार सोच रहे हैं कि कैसे पाप से मुक्त होंगे। आप जो कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र की हत्या के पाप से मैं कैसे मुक्त होऊंगा, हम लोग तो कहते हैं कि इसको मारने से कोई पाप लगेगा नहीं क्योंकि खल है। अच्छा, खल है, और जिस दिन पाप लगा उस दिन चुपके से भाग गए। यही होता है संसार में। पहले लोग बल बनाते हैं, दसवीं सदी कहते हैं इसको मारे, अब जब मार दिया जाता है तब धार जाते हैं कोई जाने मत कि हम भी कुछ राय दिए थे इसमें। उससे ऐसी बात आ जाती है। अपने प्वाइंट को आदमी इस तरह से क्लियर करता है, और ऋषियों के अनुसार धृतराष्ट्र को मारना पाप था ही नहीं, खल कह रहे हैं। वास्तव में लोग इतने उब गए थे, इतना ही अत्याचारी था, दुष्ट था वास्तव में, इससे सब उब गए थे, और इसीलिए त्राह त्राह मच गए थे कि इसको मारा जाए मारा जाए मारा जाए। उस दृष्टि से धृतराष्ट्र खल थे, लेकिन दूसरे दृष्टि से तो महाभागवतोत्तम पुरुष थे। सैकड़ों नमन करना चाहिए धृतराष्ट्र जी के चरण कमल में। परंतु उस समय ऋषियों के मन पर बहुत भय छाया था, देवता सब तबाह थे, इसीलिए लोग कह रहे थे कि खल निग्रह, आप इसका वध थोड़े करने जा रहे हैं, आप तो एक खल को काबू में करने जा रहे हैं, उसको कंट्रोल करने जा रहे हैं, और इस वज्र को आप ही धारण कर सकते हैं, दूसरे देवता में शक्ति नहीं है, कौन साहस करेगा धृतराष्ट्र के पास जाने का, आप तो सक रहे हैं, सौ असमुख जो पहले भी कर चुके हैं, आप बुल रहे हैं, तो कौन जाएगा धृतराष्ट्र के पास आपके अलावा। और देखे ना, धृतराष्ट्र सभी देवताओं को अपने पैर से रौंदने लगे थे, एक इंद्र को छोड़कर सब उनके पैरों को नीचे आ गए थे, अब यही सोच रहे थे कि आपको मार डालेगा, लेकिन वो पैर हल्का रख रहे थे, बहुत वजन देकर के नहीं रख रहे थे। तो कौन जाता देवताओं की ये हालत, किसी का साहस नहीं था धृतराष्ट्र जी के पास जाने का। एक छोटी सी कथा कहते हैं, एक बार कि एक बिल्ली थी, तो बिल्ली बहुत आक्रमण करती थी चुपके से कपट से चूहों पर, और किसी चूहा को पकड़ के खा जाती थी। तो एक बार सब मुसों ने चूहों में मीटिंग किया, इष्ट गोष्ठी किया कि क्या किया जाए, बिल्ली बार बार आक्रमण कर रही है, पता नहीं चलता, चुपचाप ऐसे मरे जैसे आकर के बैठ जाती है और फिर खा जाती है किसी चूहा। प्रस्ताव रखा गया कि बात तो दो, क्या किया जाए, क्या किया जाए इस विपत्ति से बचने के लिए। तो किसी ने अपना परामर्श दिया, राय दिया, ऐसा किया जाए कि बिल्ली के गले में घंटी बांध दिया जाए, और जंग आएगी तो टन टन घंटी बजेगी, सब हम अपने दिल में समा जाएंगे, हम एकदम सुरक्षित बच जाएंगे। तो सब ने ताली बजाया, वेरी नाइस आइडिया, बहुत अच्छी आइडिया, वेरी नाइस। तो ये प्रश्न हुआ कि कौन बिल्ली के गले में घंटी बांधे, जो जाएगा वही बिल्ली के गले में अंदर चला गया। तो लोग कह रहे ये तो मुश्किल है, कौन बांधेगा, कौन बांधेगा, आइडिया तो बहुत नाइस है लेकिन वेरी डिफिकल्ट टू अप्लाई, एप्लीकेशन बहुत कठिन है, कौन करेगा कौन करेगा। तो बाद में ये तो लाचारी है, कौन करेगा, वज्र तो बन गया, लेकिन ये वज्र से धृतराष्ट्र को कौन मारेगा, किसका साहस है उसके पास जाने का, जो पहले के सारे हथियारों को खा चुका था, अस्त्र शस्त्र को, उसके पास कौन जाएगा। वास्तव में ये बात विचारेंगे कि कौन जाएगा, इंद्र का भी साहस नहीं हो रहा था, आपने सुना है कि इंद्र को खा गया था हाथ दोनों कटने के बाद, इतना विकराल दैत्य था, इतनी उसकी शक्ति थी। इसीलिए ऋषि ने प्रार्थना की, देवराज केवल आप ही समर्थ है उसके सामने खड़ा होने में, आप कृपा कीजिए, आपको कोई पाप नहीं लगेगा, और हम लोग तो गारंटी लेते हैं कि आप पूरी दुनिया को मार करके भी जग करके मुक्त हो जाएंगे, हम लोग जग करेंगे। ये लोग कहते हैं श्रद्धा में तो असमा भी अनुष्ठित होना, आपने श्रद्धा है ही भगवान के चरणों में, कि भगवान का नाम लेने से पाप कट जाता है, यज्ञ करने से दान देने से पाप कटता है, और हम लोग विदग्ध हैं ही, तो हम लोग अनुष्ठान करेंगे। और धृतराष्ट्र जिस दिन मारे गए उस दिन पूछे भी नहीं, यज्ञ करने की बात तो बहुत दूर रहे। देखिए समय आ जाता है तो कितना मन फिर जाता है व्यक्ति। वास्तव में ऋषि लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे और पहले इस तरह का साहस किए। तो आप धृतराष्ट्र का वध करेंगे, धृतराष्ट्र एक खल है, आपको कोई पाप नहीं लगेगा, आप विश्वास कीजिए। मारिए मारिए, हम लोग हैं ना, हम लोग हैं, आपको सहारा देंगे। धृतराष्ट्र मारे गए तो सब चले गए और कहीं कोई फोन तक नहीं किया इंद्र को कि कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, कहां भागेंगे, कहां रहेंगे। तो एक बार भगवान इंद्र भी अपने घर गए, लेकिन इतना बड़ा पाप लग चुका था, वो तो देखे थे सामने धृतराष्ट्र की भक्ति को, तो मन तो अपने आप बहुत बेचैन हो रहा था। ये घर में सुखी नहीं तो पहुंचे तभी उनके पास ब्रह्महत्या पहुंची मूर्तिमान होकर। तो श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, एवं संचोदित विप्रय मरुत्वा महमद्रिपुम ब्रह्महत्या हते तस्मिन् आशसा गदृशा कपिन। एवं संचोदित विप्रय, ब्राह्मणों के द्वारा इस प्रकार से बारंबार प्रेरित होने पर मरुत्वान ने अपने शत्रु का वृत्र का वध किया। स्वयं वध नहीं किए थे, बार बार लोग कहे थे तब उन्होंने वध किया था और शत्रु का वध किया, लेकिन ब्रह्म हत्या हते तस्मिन् आशसा गदृशा कपिन। गदृशा कपि भगवान इंद्र का एक नाम है। ब्रह्म हत्या आई, ब्रह्म हत्या का पाप लग गया इंद्र को। तया इंद्र स्म सह पापम, उस ब्रह्म हत्या से इंद्र को बहुत दुख हुआ, बहुत ताप हुआ, जलन हुआ। जलन से तात्पर्य है आंच भी, आंच सीधा हीट और दुख हुआ। तया ब्रह्म हत्या, किस ब्रह्म हत्या से? देवादि कारी तया हत्या, जिस हत्या को देवता और ऋषि ने मिल करके कराया था, समय कराया था, लेकिन उन लोगों को कोई ताप नहीं हुआ। ये पहले से ही कुछ ऐसा नियम है, मान लीजिए कोई किसी का वध किया है, मर्डर किया है, तो जो मारा है उसकी ज्यादा सजा होती है और जो प्रेरित करता है उसकी कम सजा होती है। तभी उन लोगों ने प्रेरित किया था, उन लोगों पर कोई ताप नहीं लगा इस हत्या में। इसी तरह से द्वारका में प्रेरित किया था अकूर जी ने कृतवर्मा ने सतभन्वा को, मारो सत्राजीत को, मणि ले लो, वो बहुत बदमाश है, और वो उनके द्वारा इंस्टिगेट होकर के मार दिया। और जब भगवान को पता लगा सतभन्वा को मारने के लिए आए, तो सतभन्वा अक्रूर जी और कृतवर्मा जी के पास जाकर कहा कि हमको बचाइए, आप लोगों ने कहा था ऐसा करने के लिए। तो अक्रूर जी कहते हैं, हमारे कहने से तुम कुएं में कूद जाओगे? मूर्ख कहे कि हम कहे थे मान लो तुमको, कहे थे कि मारो, लेकिन तुम मूर्खता बस वहां स्त्रियों की दृष्टि में क्यों आ गए? उन लोगों तुमको पहचान लिया उन लोगों ने, हम क्या जानते थे कि इतना बेवकूफ हो कि मारने में तुमको स्त्रियां देख लेंगी। अब ये बात नाम भी मत लो कि मैं तुमको कुछ कहा था, कुछ भी हम कृष्ण बलराम से झगड़ा नहीं कर सकते हैं, जानते हो कौन है, ईश्वर है, भगवान है, उनकी इच्छा से सृष्टि होती है, प्रलय होता है, हम तुमको कुछ नहीं कहे थे, भागो यहां से। इस तरह की बात कर फिर बोलना भी वही कहा। इस तरह से समय बदल जाता है तब आदमी का मन भी बदल जाता है। कुछ भी ऋषियों को कम से कम इंद्र देवता का साथ देना चाहिए था, लेकिन तो इंद्र केवल दुख भोगे। उस यद्यपि हत्या कराया था ऋषियों और देवताओं ने मिल करके, लेकिन दुख भोगे केवल इंद्र, निवृत्ति न, सुख का लेश मात्र भी इंद्र को प्राप्त नहीं था। इतना दुखी वे थे, इतना दुखी थे कि क्या कहा, आनंद का एक किरण भी, लेश भी उनको स्पर्श नहीं कर रहा था, वो बिल्कुल दग्ध हो रहे थे। इस पर एक प्रश्न होता है कि आखिर धैर्य जादू गुण उनमें थे तो भी इतना क्यों चिंतित थे, इतना उनके मन में क्या दुख था? तो सुबह सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हिर्मंतम वाच्यतम प्राप्तम शिखरम कपि न हुआ। किसी इज्जतदार आदमी को, सम्माननीय आदमी के जीवन में यदि उसकी निंदा होने लगती है और लोगों की वाच्यता को प्राप्त होता है, निंदा का पात्र बन जाता है, तो वह व्यक्ति फिर सुखी नहीं रहता। करने के लिए उन्होंने वृद्धाश्रम का बंद किया, लेकिन जहां जिधे हिर जाए उधर आवाज आ रही थी, छी छी इंद्र ब्राह्मण की हत्या किया है स्वर्ग का ले ले, और जो लोग हत्या कराए थे वो लोग भी कह रहे थे दूसरों से कि ऐसा नालायक है, ब्राह्मण को हत्या किया, वो किया वो किया, ये लोग भी कह रहे ऐसा होना चाहिए, और उसका कुछ बिगाड़ नहीं रहा था, ये नहीं कर रहा था, ये गया युद्ध करने के लिए, ऐसा करने के लिए, उसको बहुत दुख होगा, बहुत दुख होगा, ब्राह्मण की हत्या किया, देहरादून अपने चारों द्वारा दूसरों द्वारा इन बातों को सुनते थे कि हमारे गुस्से में लगा ऐसा बोल रहे हैं, तो वो बिल्कुल सुखी नहीं थे। हिमंतम वाच्यतम प्राप्तम, हिमंतम का अर्थ तो जो व्यक्ति लज्जा वाला होता है, यदि लज्जा उसमें होती है तो उसकी निंदा जो समाज में होती है तो बहुत दुखित होता है, जो शर्म है जो हाया है तब तो कुछ भी कहिए उसके विषय में, वो तो शाम के साथ छाती पान करके चलेगा कोई कुछ भी कर, लेकिन वास्तव में ही मंथन लज्जावान व्यक्ति है, शिलयान व्यक्ति है, उसकी समाज में निंदा हो तो उसको ऐसा लगता है कि मरण हो जाए उस निर्गत की अपेक्षा अच्छा है। भगवान ने गीता में इस बात को कहा है, संभाव को सच्चा करके मरना गति इच्छते, अर्जुन से कहते हैं भगवान कि अर्जुन तुम युद्ध छोड़ करके भाग जाओगे तो जानते हो तुमको लोग क्या कहेंगे, यही कहेंगे कि कौरवों की सजी हुई सेना को देखा तो दया का बहाना बना करके भाग गया, ये नपुंसक कायर, सब लोग यही कहेंगे, और तुम अभी अगर यहां से चले न कुरुक्षेत्र से तो कौरवों की ऐसी ताली और हंसी होगी कि तुम फिर धनुष उठा लोगे। एक सम्माननीय व्यक्ति की अखिल की मरण से भी खराब मानी जाती है, उसने तुम सोचोगे कि बल्कि मर जाना अच्छा है, और अभी चले ना, चलो थोड़ा देर तक उधर पीछे तो वो लोग ताले टूटेंगे कौरव पक्ष के लोग, तब तुम फिर धनुष लेकर के और गए, हाँ हाँ मैं बता देता हूं तुम्हें, ऐसा अर्जुन करते भगवान इसको देख रहे थे, ऐसे में युद्ध मत छोड़ो, जाओ मत, नहीं तो तुम्हारी हंसी होगी और तुम्हारे नरेल से भी जबर घात बुरा लगेगा। तो भगवान इंद्र कोई ऐसे आदमी नहीं थे, ऐसे व्यक्ति नहीं थे आज तक जिनकी निंदा की जाए, जो भी किए थे बड़े बड़े लोगों के कहने से किए थे, भगवान के कहने से किए थे, सब कुछ योजना थी, सबका आशीर्वाद था, ऋषि मुनि देवता सब काले थे, जब वध कर दिए तो सबके वाच्यता को प्राप्त हुए, वाच्य कहते हैं निंदे, निंदेता को प्राप्त, सब निंदा कर रहे थे अपने अपने घरों में, अरे इसका यही काम है, उस गुरु को प्रणाम नहीं किया, बृहस्पति जी छोड़ दिए, विश्वरूप को गुरु बनाया तो उसको कत्ल कर दिया, फिर ग्राहण का वध किया, बड़े पद पर है लेकिन जनता का बहुत मुख होता है, कब क्या बोलेगी कोई ठीक नहीं है, और बड़े बड़े लोगों के विषय में लोग क्या बोलते रहते हैं, सारी बातें थोड़े अखबार में छपती हैं, सारी बातें बहुत छपती है, और बिना मतलब के लोग बोलते रहते हैं, ऐसा है वो है वो है बदमाश है ऐसा, प्रशंसा की अपेक्षा निंदा ज्यादा हेतु रहती है, खासकर के बड़े लोगों की, कि संसार का स्वरूप कोई ना कोई दोष निकाले, जो लोग कहे थे इंद्र को कि तुम मारे मारे उस खल को मारने से तुमको पाप नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, ये लोग भी ठीक काम नहीं है, इंद्र जैसे ईश्वर का ऐसा काम नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण का दंभ कर रहा है ये कर रहा है, सामने नहीं कहते, लेकिन इंद्र देवता को सब बातें भिन्न करके कान में पड़ जाती थी, इसलिए अपने घर से बाहर भी नहीं दिखा रहे थे, तो समाज में नहीं जा रहे थे, और इसके बाद उन्होंने देखा कि ब्रह्म हत्या मृत्यु मृत्यु होकर के उनके सामने आ गई। कांडदर्शन धारण तुम चंडाली निरूपिणी, इन लोगों देखा कि ब्रह्म हत्या रूपिणी आ गई, रूपिणी का अर्थ बिल्कुल मृत्यु है, और इंद्र देवता उसको देख करके भागे। उस ब्रह्म हत्या के शरीर से बहुत दुर्गंध निकल रही थी और ताप निकल रहा था, जलन होने लगी इंद्र के शरीर में, बहुत जोर से भागे। जब भागे तो ब्रह्म हत्या भी अनुभावन की, उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। उसका भेद क्या था? चंडाली पूरा, चंडाली जैस, चंडाल जरवा वेद नामांगी, बुढ़ापा के कारण उसका शरीर कांप रहा था, अतिशय वही स्त्री के रूप में थी। ब्रह्म हत्या एकदम केवल हड्डी भर शरीर में थी, चाम सटे हुए थे, मांस का नामो निशान नहीं था, कांप रहा था शरीर, जक्ष्म ग्रस्तम असित पचान, और क्षय रोग ने उसको व्याप्त कर लिया। क्षय रोग का अर्थ है जक्ष्म, जिसमें शरीर दिन पर दिन छीन होता जाता है, छीन होता जाता है, उसको क्षय रोग कहते हैं। तो बिल्कुल क्षय रोग से व्याप्त थी, और मुख से रह रह करके खून निकलता था, नाक से और मुख से खून निकल रहा था, वह खून उसके वस्त्र पर लगा हुआ था जहां का अस्त्रिक पता, तत्कार का वस्त्र, वस्त्र पर रक्त लगा हुआ था, इस तरह से उसका रूप था। विकीर्ण कलितम केशम, उसके केश सारे उजले थे, पके हुए और विकीर्ण थे, छोटे बांधे हुए नहीं थे, विकीर्ण केश थे, फैले हुए। और इंद्र को नहीं कहते थे तिष्ठ तिष्ठ इतिहास में, वो बोल रहे थे रुके रुके रुके, जितना जोर से भगवान इंद्र भाग रहे थे उसी रफ्तार से ब्रह्म हत्या जा रहे थे पीछे पीछे। तिष्ठ तिष्ठ इतिहास में मून गंध से गंधे न कुलकुल मार्ग दूसरा, और इसके श्वास से वो श्वास लेते थे मुख से नाक से, तो उसमें नील की गंध निकलती थी, मछली की गंध, कितनी खराब मछली की गंध होती है, गंदे में सबको अनुभव है इसका, बहुत कहीं कहीं मछली का बाजार रहता है तो समुद्र में लाते हैं मछली, बहुत दुर्गंध लगती है। इस तरह की नील गंधी ऐसी गंध है ना, ऐसी मैंने प्राण प्राणवायु इसके साथ से मछली की गंध निकल गई थी, बहुत उत्कट कुर्वती मार्ग दूषण, जिधर जा रहे थे उधर मार्ग दूषित होता जा रहा था, दूषित का अर्थ खून गिरता था उसके मुख से और मछली की गंध फैल जाती थी, सब जो सारी ही मछली की गंध, ताजा मछली का गंध नहीं, सारी ही मछली की गंध निकल गई। भगवान इंद्र सबसे पहले उत्तर भाग मधो गत, इसके बाद विषय उत्तर गया सहस्त्राक्ष विषाम पते, हे महाराज परीक्षित, भगवान इंद्र को 1000 आंख है सारे शरीर में, ये चारों तरफ भागने लगे, सबसे पहले आकाश में गए, इसके बाद 200 दिशाओं में भागे, जहां जहां जा रहे थे वहां वहां ब्रह्म हत्या उनके साथ लगी हुई थी, लेकिन अंत में पूर्वोत्तर दिशा में भागे और मान सरोवर में जाकर के कमल के माल के तंतु में समा गए, कमल कमल नाल के तंतु में समा गए। कमल का फूल होता है, कमल के फूल के नीचे कमल की डंडी होती है, उसके नाल या मृणाल तंतु, कमल नाल के भीतर आपने अपने ध्यान से देखा होगा बहुत छोटा सुराख होता है, छिद्र होता है, उस छिद्र में भगवान इंद्र अपने जैव बल से प्रवेश कर गए, वहां रहने लगे। जिसके बाद ब्रह्म हत्या ने उनको देखा नहीं कि कहां चला गया, पहले तो पानी में घुसे और पानी में डूब करके कमल के नाल में प्रवेश कर गए। सत पुष्कर नाल तंतु अलभ्य भोग जब आदि देता है, वर्षा सहस्र मलक्ष तंत संचित ब्रह्म बधाच। इतनी बड़े देवता की एक दिन ये दशा हुई, घर द्वार परिवार सब छूटा, समाज छूटा, जीवन बचाना कठिन था, मान सरोवर के भीतर प्रवेश किया और कमल के पंक्ति में मल समा गए। कितने वर्षों के स आवश्यक पुष्कर माल तंतु, पुष्कर कमल को कहा जाता है, कमल माल के तंतु में प्रवेश कर गए। कितने दिन रहे? 1000 वर्ष तक उसमें रहे। अलब्ध हो गए, भोजन नहीं मिला 1000 वर्ष तक, बिना खाए पिए अलब्ध हो गए। जगह भी देता, इसका कारण यह था कि इंद्र को जो भोजन पहुंचाता है व्यक्ति, जो उनका साथी है, वह है अग्निदेव। अग्निदेव भोजन पहुंचाते हैं देवताओं को, देवताओं के मुख माने जाते हैं, हवन किया जाता है, भोजन देवताओं को पहुंचता है। लेकिन चूंकि इंद्र जल में रह रहे थे तो अग्निदेव तो जल के भीतर जा नहीं रहे थे, तो जब यह अग्निदेवता है, यदि अग्निदेवता इनके दूत थे, इनको पहुंचाने वाले थे, लेकिन इन जल के भीतर रह रहे थे, अतः भोजन पहुंच नहीं रहा था। 1000 वर्ष तक बिना खाए में रहना पड़ा। आश्चर्य है कि जब भगवान भीष्म ने अनुमति दिए थे मरने में, और सारे ऋषि मुनि जो शास्त्रों के अनुसार कहे थे कि मारिए, फिर भी ब्रह्महत्या लग गई वृत्रासुर पर। कर्म की गति बहुत कठिन है। 1000 वर्ष तक बिना खाए रहे, यदि यह बात थी कि वे सुरक्षित थे, वहां पर ब्रह्महत्या उनका अभिभूत नहीं कर पा रहे थे, पाप वहां उनका अभिभूत नहीं कर पा रहा था, सुरक्षित रहे मतलब जीवित रहे, लेकिन अलब्ध भोग, भोग नहीं मिला। 1000 वर्ष तक वे एक सेकेंड नहीं सोए, सदा केवल जप करते रहते थे, भगवान का नाम लेते रहते थे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। एक क्षण भी वे सो नहीं, संचिंतन ब्रह्म बधार विमोक्षण, यही चिंतन करते रहते थे, भगवान का चिंतन करते रहते थे, जो ब्रह्म हत्या के पाप से छुड़ाने वाले थे, ये विचार करते थे कैसे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होऊंगा। यदि प्रयास करके भगवान का नाम लिया जाए तो बहुत जल्दी आदमी समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। प्रयास करके कथा सुननी चाहिए और नाम जप कीर्तन आदि करना चाहिए। कहीं कहीं तो वो खा करके कथा चालू करते हैं, और खा करके कथा चालू करेंगे सुनना तो सुनने की अपेक्षा ज्यादा सही, ये देखा जाए। सिर्फ कथा के बाद खाने का नियम सब जगह, कथा कथांत प्रसाद है, कथा के अंत में प्रसाद होने चाहिए, हम लोगों का बिल्कुल ठीक है, कथा के बाद प्रसाद। इंद्र देवता जो दुनिया को भोजन देते हैं, वर्षा करके कोटि कोटि टन अनाज दूध दही से पैदा करते हैं, उनको 1000 वर्ष तक भोजन नहीं मिला। वर्षा सहस्रम अलक्षितम पर, और 1000 वर्ष तक भोजन नहीं मिला, और सबसे अपने समाज से या किसी से भी अलक्षित, एकदम अलक्षित, कोई जानता ही नहीं था, स्वर्ग में देवता ऋषि को पता ही नहीं चला कि इंद्र कहां चले गए, किसी को पता नहीं था कि इंद्र कहां गए कहां गए, और यही सोचते रहते कि कैसे वृत्रासुर की हत्या के पाप से मुक्त होऊंगा, कैसे मुक्त होऊंगा, अर्थात भगवान का भजन करते रहते थे। तो प्रश्न होता है तो उस समय स्वर्ग का शासन कैसे चल रहा था इंद्र के बिना? तब श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, पार्व त्रिणाकम महिष सास विद्या तपो योग बलानुभाव है, स्वसंत स्वर्ग मदांध बुद्धि मूत तुरश्चान गति गतियान। तब तक त्रिणाक तीसरा स्वर्ग अर्थात स्वर्ग में सबसे श्रेष्ठ इंद्र देवता के स्वर्ग में महुष प्रशास महुष महाराज शासन कर रहे थे। महुष चंद्रवंश में एक राजा हुए हैं, ये सोम वंश में, जैसे सबसे पहले भगवान से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा से अत्रि, और अतिरिक्त से सोम और सोम से बुध है, बुध से पूर्वा, पूर्वा से आयु और आयु के पुत्र हुए महिष, महिष के जजाति और जजाति के जादु, इस तरह से परंपरा थी। तो महिष महाराज स्वर्ग के इंद्र बने। ये प्रश्न होता है कि एक मनुष्य से कैसे स्वर्ग का राज्य प्राप्त किया और अभी देवराज का पद मनुष्य इस तरह से कैसे हो गया। तब कहते हैं विद्या तपो देव बला निभावन, क्योंकि महिष महाराज में विद्या थी। विद्या से तात्पर्य है राजनीति, पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे थे। देखते हैं पढ़े लिखे लोगों को हाई क्लास की नौकरी मिलती है। तो इंद्र पद पर योग्य हुए, इंद्र पद पर जाने के योग्य बहुत पढ़े लिखे थे, जो उचित पढ़ाई है और तपस्या किए थे, भोजन नहीं थे और बल था इनमें सब तरह से, बुद्धि आदि थी। तब तो इतने बड़े पद पर गए, देवता लोग स्वयं बुला करके ले गए इनको। इंद्र के पद पर महिष महाराज रह रहे थे, शिव सुंदर के सामने रहता रहा जब तक इंद्र देवता इधर मान सरोवर में रह रहे। लेकिन सह संपदय स्वर्ग मदान्ध बुद्धि, लेकिन वह महिष स्वर्ग के संपत्तियों से और ऐश्वर्य से मद से युक्त हो गया और उस मद से इसकी बुद्धि अंध हो गई, विवेक नष्ट हो गया। संपद ऐश्वर्याभ्याम मद और तेज मदेन अंधा बुद्धि, जैसे बुद्धि अंधी हो गई, बाहर तो आंख देखा ही रही थी लेकिन बुद्धि अंधी हो गई। श्री वसुदेव गोसाई कहते हैं कुछ लोग बाहर से ठीक आंख वाले होते हैं लेकिन भीतर से ब्लाइंड होते हैं, वो कुछ भी नहीं सोचता है, उनको मदांध बुद्धि कहते हैं, अंध बुद्धि। इतना बड़ा है स्वर्ग का है, इंद्र का पद और संपत्ति भोग वैभव सब, तो उनकी बुद्धि चौपट हो गई। क्या बुद्धि चौपट हो गई? उन्होंने सोचा कि मैं इंद्र पद पर ही, इसलिए इंद्र के अधिकार में जो जो वस्तु है मेरे उपयोग के लिए होना चाहिए। ये सोच इंद्र का आसन उनके लिए था, इंद्र का भवन उनके लिए था, इंद्र का विमान, इंद्र का सब कुछ। तो उनके मन में यह अविवेक आ गया कि इंद्र की पत्नी भी मेरी सेवा में रहनी चाहिए। देखिए बुद्धि नष्ट हो गई, गए हम देवता बन करके। लेकिन धन का वास्तव में ऐसा स्वभाव होता है, धन मनुष्य को अंधा कर देता है, धन और पद ये दोनों अंधा कर देते हैं। इतने बड़े व्यक्ति थे, इतने कबीर थे कि उनको देवराज इंद्र के पद पर लाया गया, लेकिन देवराज इंद्र का पद ऐसा है कि वे दूषित कर दिया, तो बिल्कुल विवेक नष्ट हो गया। उन्होंने एक दिन डायरेक्ट सचिव से कहा, वे इंद्र की पत्नी थी, इस समय मैं इंद्र हूं, तुम्हारे पति के पद पर मैं हूं, इसलिए तुम्हें मेरी सेवा करनी चाहिए, तुम मेरे तल्प पर मेरे पद पर आए। इस तरह से डायरेक्ट आज्ञा कर दिया। वो बेचारी प्रतिवर्ता स्त्री के पति के विरह में थी, उसके पति पता नहीं कहां चले गए थे, उसको जानकारी नहीं, विपत्ति में दिन काट रहे थे और वो तो बहुत विकल हो गई, रोने लगी। तो उसने अपने गुरु बृहस्पति से ये बात कहा कि महेश महाराज ऐसा प्रस्ताव किए हैं, आप हमारी रक्षा के लिए। बृहस्पति भी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, वो जान गए जब तक ब्राह्मण इसको साप नहीं देंगे तब तक यहां से हटेगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम स्वीकार कर लो इसका प्रस्ताव और यह कहो कि मैं आपके घर नहीं आऊंगी, आप मेरे घर आइए, लेकिन आप स्वर्ग के राजा हैं तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूं कि ये सब परसों लोग जो कोई काम धंधा नहीं करते हैं, विद्राव हैं जिसमें अगस्त जीवित, अगर उन लोगों को हार बना करके इस पालकी में बैठ कर आप मेरे पास आएंगे तब मैं आपको स्वीकार कर लूंगी। ये बृहस्पति जी ने बुद्धि दिया। जब संकट का समय आता है तो वास्तव में गुरु ही काम आता है, इसलिए बुद्धि बताई है। तब कहो कि आप इतने बलवान हैं, इतने प्रभावशाली हैं, तो आप इन ब्राह्मण से पहले भी भाई हैं, उनको उनको बाहर बना करके और इस पालकी में बैठ करके आइए। तो ये इतना अंधा हो चुका था कि ये विचार नहीं किया कि ब्राह्मण से पालकी नहीं भयाना चाहिए, वही सप्तर्षि लोग निगठित है कि बस इतनी ही सर्प है ना, ओ तब तो कोई बात नहीं। इसके बाद उन्होंने सातों ऋषियों को दिलाया और कहा कि तुम लोगों को मेरी पालकी ढोना है। पालकी बिल्कुल खुली थी, मनुष्य लोग की पालकी नहीं थी, स्वर्गीय पालकी थी। आज्ञा हो गई, राजा की आज्ञा हो गई इंद्र की। वो लोग लगे पालकी में उठाए, कभी पालकी ढोए नहीं थे, बेचारे चलने में कसर नसर कर रहे थे और ये तो काम से उन्मत्त हो रहे थे। उन्होंने कहा सर्प सर्प, संस्कृत में सर्प कहा थे, जल्दी चलो जल्दी चलो, सरको सरको, समझो चलो जल्दी चलो। उनका एक एक मिनट जीव जैसा दिख रहा, चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। अगस्त जो सामने थे उन पर पैर से मारते हुए कहते हैं सर्प सर्प, जल्दी चलो जल्दी चलो। अगस्त जी पर पैर से मार रहा हो, इतना सुनते ही अगस्त जी ने पालकी को रख करके और कहा कि तुम सर्प सर्प करते हो, तुरंत सर्प हो जाओ। इतना सुनना था कि महेश महाराज सर्प हो गए, अजगर हो गए। बहुत विशाल और विचित्र गुण वाला अजगर बन गए, क्षण भर में जीवन दूसरा हो गया। इसलिए मनुष्य को बचना चाहिए अभिमान से, तुरंत पतन हो जाता है एक क्षण में। लेकिन रोने लगे उनको तुरंत विवेक आ गया, भाई है मैं यह क्या किया, ये चरण में गिर गया, अगस्त जी को चरण में गिर गए, माफी मांगने लगे। तब अगस्त जी को कृपा आ गई, उनके हृदय में कृपा आ गई, उन्होंने आश्वासन दिया ठीक है आप किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से जब बात करेंगे तो सर्प जन से मुक्त हो जाएंगे और आपके भोजन की हम व्यवस्था करते हैं। दिन के छठे भाग में कोई भी व्यक्ति बलवान से बलवान, सिंह हो या हाथी हो, कोई भी हो, आपके चंगुल से छूट नहीं सकेगा, तो भोजन आपको ऐसे प्राप्त होता रहेगा। दिन के छठे भाग में लगभग शाम के समय जिसको भी आप पकड़ लेंगे आपके पंजे से छूट नहीं पाएगा और किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से जब आपकी बातचीत होगी तो आप सर्प जनी से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है तो अजगर हो गए, अजगर होकर के वन में रहते तो इसी तरह से, और उनको ये बात याद थी कि किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से बात करना है मुझे। कई काल बीत गए, तो महाराज युधिष्ठिर वनवास में गए थे अपने भाइयों के साथ और पत्नी द्रौपदी के साथ रह रहे थे। एक दिन भीमसेन बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ते हुए, पर्वतों को तोड़ते हुए गए थे, तो सभी भाई चले आए, भीमसेन नहीं लौटे शाम को, तो युधिष्ठिर महाराज उनको खोजने के लिए चले। वास्तविक बात यह थी कि महेश जी ने पकड़ लिया था भीमसेन को और ऋषि का वरदान था कि कोई भी तुम्हारी पकड़ में आ जाएगा छूट नहीं पाएगा। तो भीमसेन तो समझे कि यह तो बिल्कुल साधारण बात है, इस अजगर को मार देना। जब अजगर उनको पकड़ लिया तो जितना जितना छूटने का प्रयास करते थे उतना ही जकड़ने लगा और इसके बाद निश्चेष्ट हो गए, मरे जैसे पड़ गए। व्यक्ति महेश को यह बात याद थे कि हमारे ही वंश में जन्म लिया है, इसमें मारना नहीं है, खाना नहीं है, लेकिन शरीर से टाइट कस कर मुख को ऐसे कर रहे थे तो भीमसेन तो यही समझे कि अब तो मरना निश्चित। और महेश इसीलिए पकड़े थे भीम को कि युधिष्ठिर आएंगे, उनके साथ बात करेंगे, इस पृथ्वी का सबसे श्रेष्ठ मनुष्य वही, कि युधिष्ठिर से बात करके मैं सर्प जनी से मुक्त हो जाऊंगा। भीमसेन बिल्कुल पस्त हो गए, मरे जैसे हो गए थे। जब युधिष्ठिर महाराज गए अपने गुरु के साथ धर्म जी के साथ, तो देखे कि हमारा भाई तो गया है इस तरह से, लेकिन बहुत निकट गए तो देखे कि अभी सांस चल रही है और शरीर में कहीं रक्त नहीं चू रहा है, सांप नशा नहीं है, और सांप भी अजीब था, विचित्र था, ऐसा सर्प विदेशी महाराज देखे नहीं थे। तो समझ गए कि कोई श्रेष्ठ व्यक्ति उस दुर्गति में पड़ा हुआ है सर्प योनि में। तो वे जाकर के निकट बात करने लगे। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा विश्वास है कि आप कोई श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, आप केवल अजगर नहीं हैं, और आप कृपा करके मेरे भाई को छोड़ दीजिए, आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है। तो सर्प बोला, नहीं, ईश्वर के द्वारा दिया है यह मेरा भोजन है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। बातचीत प्रारंभ हो गई। मैं नहीं छोड़ सकता। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि इसके बगल में मैं दूसरा जानवर भी आपको दी खाने के लिए, तो आप छोड़ सकते हैं मैं? तो महुष कहते हैं, मैं तुम्हारी कृपा का भोजन क्यों करें? ईश्वर ने जो हमको डायरेक्ट दिया है उसको छोड़ दिया और तुम्हारे दिया यह खाऊं? नहीं, मैंने उसको पकड़ा है, मैं उसको खा करके रहूंगा, मैं निश्चित खाऊंगा। और यदि तुम इसको छुड़ाना चाहते हो तो मैं तुमसे एक प्रश्न कर रहा हूं, और सही सही उत्तर दोगे मेरा मन संतुष्ट हो जाएगा, तो हो सकता है छोड़ दें। तो युधिष्ठिर महाराज कहते ठीक है, आप हमसे प्रश्न कीजिए। महर्षि महाराज ने प्रश्न किया है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है कि ब्राह्मण जन्म से होता है कि कर्म से। महर्षि महाराज का प्रश्न ध्यान रखना चाहिए, ब्राह्मण के विषय में ही प्रश्न किया गया है कि ब्राह्मण जन्म से होता है कि कर्म करने पर ब्राह्मण होता है, मनुष्य कर्म से ब्राह्मण होता है कि जन्म से, यह प्रश्न नहीं है। ब्राह्मण जन्म से होता है कि कर्म से होता है? तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि नहीं, ब्राह्मण का जन्म जहां तक है तो सबके जन्म जैसा होता है, वह जो ब्राह्मण का कर्म करता है तब उसे ब्राह्मण माना जाता है। उन्होंने उत्तर दिया बहुत विस्तार से महाभारत में वर्णन। मनु संतुष्ट हो गए। तो फिर कहते हैं, तुम्हारा कोई प्रश्न है? तुम उसे पूछ सकते हो? युधिष्ठिर महाराज पूछे कि हे शरतराज, आप यह बताइए, कृष्ण भावना से ब्रह्म शब्द का प्रयोग करें, ब्रह्म भावना से, कृष्ण भावना से गिरामी वाले संसार में कौन सबसे घातक बात है, सबसे ज्यादा भक्ति छुड़ाने वाली कौन बात? तो महर्षि महाराज कान्हा था, वो कहते हैं युधिष्ठिर, मनुष्य को अभिगति में गिराने में सबसे बड़ा कारण भान और पद है, और इसका प्रमाण मैं हूं। मैं तुम्हारा पूर्वज हूं महेश, और खोल करके कहने लगे। तुमने सुना होगा कि मैं इंद्र तट पर था पहले, मोर पहले, लेकिन स्वर्ग में जाकर के मेरी बुद्धि नष्ट हो गई, उस धन में और उस वैभव में पद ने मेरी मति को नष्ट कर दिया, इससे बचना चाहिए। उदार महेश कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति चाहता है भगवान में मन लगा रहे तो उसे ऊंचे पद और अतिशय धन से बचना चाहिए, नहीं तो भजन नहीं कर पाएगा, नष्ट हो जाएगा, वो कह रहा हूं। और इसमें मैं प्रमाण हूं, मैं अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूं, मैं इस कर्म को। तो इस तरह से दोनों में बातचीत हो रहा है। फिर कहता है, कुछ पूछो और कुछ पूछो। तो मैं तुमसे पूछता हूं, तो बात करना चाहते थे, बात करते करते उन्होंने बात में कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे भाई को छोड़ देता हूं, मैं इसीलिए पकड़ा था कि तुम मेरे पास आएंगे तुमसे बातचीत करने के लिए। हमें अगस्त जी ने साथ दिया था कि किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से बात करोगे तो सर्प देने से मुक्त हो जाओगे। तो ये तुम्हारे भाई रहे, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। और उसी समय विमान आया, ये सर्प देने से मुक्त हो गया। युधिष्ठिर महाराज के देखते देखते फिर स्वर्ग चले गए। ये महेश की कथा है। पावक प्रणातम महेश शासक विद्या कपोर जग महानुभाव, अपने विद्या ताप और बल के प्रभाव से एक दिन इंद्र बने थे महेश महाराज, लेकिन सची के प्रति दूर दृष्टि करने के कारण फिर नीचे सर्प जन्म में चल गया। यदि महेश महाराज सची के प्रति कलुषित दृष्टि नहीं किए होते तो इंद्र के लिए बहुत कठिन हो जाता उस पद को लेना, वो नहीं हटते। और दूसरे लोग भी कहते कि नहीं, ये हटने लायक नहीं है, तुमने तो ब्राह्मण की हत्या किया है, तो सिद्ध है, यही रहेंगे। देखिए, मनुष्य अपने कर्मे से गिर जाता है। एक संस्कृत श्लोक में कहा गया है कि अपने कर्मों से व्यक्ति ऊपर चढ़ता है और अपने कर्मों से ही नीचे गिर जाता है। तो उदाहरण देता है कि जो कुआं खोदने वाला अपने कर्म से ही नीचे नीचे चला जाता है, रेल खाने जाएगा फिट तो नीचे जाएगा कि नहीं, कुआं खोदने वाला खुद ही अधः चला जाता है धीरे धीरे, और घर बनाने वाला मिस्त्री अपने कर्म से जोड़ते जोड़ते रोज ऊपर ऊपर उठता जाता है, और जो जुगाड़ होता है घर बनाने का उसको भी ऊपर करना पड़ता है, अपना कर्म है अपना घर जोड़ रहा है इसलिए ऊपर उठता जा रहा है, मनुष्य अपने ही कर्म से ऊपर उठता है और अपने ही कर्म से नीचे गिरता है। तो महेश महाराज इस तरह से इंद्र बने लेकिन बाद में गिरा दिए गए। तपो गते ब्रह्म गिरे कहीं पर जब यह पता चल गया कि महेश गए अजगर बन करके कि स्वर्ग खाली हो गया तो लगभग 1000 वर्ष बीत चुका था। तो ब्रह्मा जी जानते थे कि इंद्र कहां रह रहा है, तो उन्होंने बृहस्पति जी से कहा कि चलिए आपका शिष्य मान सरोवर में है उसको बुलाया जाए। वो लोग गए तट पर खड़े होकर के बृहस्पति जी बुला रहे हैं इंद्र को कि आओ आओ ऐसा हो गया स्वर्ग खाली है। तो इंद्र भगवान निकले, अब पाप पाप समाप्त हो चुका था। ऋतंभरत भयं निवारिता ऋतंभरम ऋतंभर का ऋतम भरति सत्यम कालो की सत्य काल को हरि, जो सत्य का भरण करते हैं पालन करते हैं ऐसे भगवान विष्णु को ऋतंभर कहते हैं, और लक्ष्मी का नाम है ऋतंभरा। तो ऋतंभर ध्यान लिया रहता है, ऋतंभर भगवान का ध्यान कर रहे थे लगातार इंद्र, इसलिए एक पाप से बच गए थे निवारित अघन, अब इनको कुछ कर नहीं पाया था ब्रह्म का, और पापस की दिव्य देवतया हटल जाए, और पूर्वोत्तर दिशा में देवता है भगवान भेज ग्रह। तो उन्होंने देखा कि इंद्र भाग करके मेरी शरण में आए हैं, पूर्वोत्तर दिशा में आए हैं, तो वे भी पाप को कम कर रहे थे अपने प्रभाव से, तो भगवान भी रक्षा कर रहे थे इंद्र के और भगवान शिव भी रक्षा कर रहे थे, और नाभ्य भी अविपिन विष्णु पत्नी पाप उनको दबोच नहीं पाया क्योंकि विष्णु पत्नी भी रक्षा कर रही थी, तो तीन तीन लोग रक्षा कर रहे थे भगवान और भगवान शिव और श्री जी लक्ष्मी भी रक्षा कर रहे। लक्ष्मी जी कमल वन में रहती है, कमल ही उनका निवास स्थान है, तो लक्ष्मी जी ने सोचा कि बेचारा हमारे घर में आया है तो इसलिए वो रक्षा कर रही थी। अच्छे व्यक्ति हैं इंद्र वास्तव में सबके लिए, इसीलिए वे लोग रक्षा कर रहे थे, परंतु कौन भी इतने दिनों तक बिना भोजन के रहना पड़ा, भगवान की कृपा से पाप दूर हो गया, लक्ष्मी जी की कृपा से, ऐसे लक्ष्मी जी उन्हें भोजन देती थी, मां हम जगत जननी हैं तो अपने शरण में अपने घर में कोई बच्चा आया है तो श्री जी कैसे बिना खिलाएगा, तो श्री नहीं पाला था मतलब लक्ष्मी जी ने इंद्र को पाला था, इंद्र पर कृपा थी। इसके बाद आए इंद्र बुलाने के बाद स्वर्ग, जब अपने घर आ गए तब वे ऋषि लोग फिर जूते जो कहे थे कि हम लोग सूर्य जग कराएंगे, सब धीरे धीरे फिर आए। तम च ब्रह्मर्ष अभिज्ञा है मेधेन भारत जथावत दीक्षे अंच को पुरुषाराधन चा, सब लोग आए और आकर के पता नहीं क्या क्या कहे होंगे, मेरी आपका तो पता ही नहीं लगा कहाँ चले गए थे हम लोग, चल रहे थे देवता लोग ऋषि में भेंट नहीं मिलते हैं, लेकिन इतना तो देख लगे आपका पता नहीं था कहाँ थे। और इसके बाद उनको दीक्षित किए जग देने, तो विधि बताया स्नान कराया जग करने के लिए, अथर्जना में पुरुष सर्वदेव मैं आत्मनि अश्वमेधे महेन्द्रनाथ दुखते ब्रह्मवाद भी, सब देवनागे ऋषि लोग जग चालू कराए, जग में भगवान की पूजा को विधिवत की गई, भगवान सर्वांतर जानी हैं परमात्मा हैं, उनकी पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा हो जाती है, वे सर्वदेवमय हैं, भगवान प्रसन्न हो गए। अतः भगवान की पूजा करने के कारण इंद्र का यह महान पाप भी मृत होने में सुन गया है, विहार यह भावना जीरो पहुंच गया पाप शून्याय मृत शून्य में पहुंच गया, किसके द्वारा तेन पुरुषे रह गए, श्री भगवान की कृपा से उनका पाप बिल्कुल जीरो हो गया, खत्म हो गया। भगवान की पूजा करने से, भजन करने से पाप बिल्कुल समाप्त हो गया, जैसे सूर्य के द्वारा निहार कुहरा का बिल्कुल नाश हो जाता। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। बहुत दिन तक यज्ञ चला था, भगवान की कीर्ति गाई जा रही थी, नाम गाया जा रहा था, तो जैसे भानु सूर्य कुहरा को नष्ट कर देता है, वैसे भगवान की पूजा ने, भजन ने इंद्र के पाप को बिल्कुल शून्य कर दिया, थोड़ा ही पाप नहीं रह गया, चमकने लगे। लेकिन पाप बहुत ज्यादा था, जैसे कोहरा बहुत ज्यादा होता है लेकिन सूर्य में उगने पर नष्ट हो जाता, इस तरह से इंद्र का पाप पाप अपराध सब चला गया। सौभाग्य पुरुषं पुराणं इंद्र महानाश विधे पाप। जब इंद्रदेव ने अश्वमेध यज्ञ किया वेद के अनुसार और मरीचि आदि ब्राह्मण उस यज्ञ को कराया, तो उस यज्ञ में अभिजज्ञ यज्ञों के भक्ता परम पुरुष भगवान विष्णु का भजन करके आराधना करके इंद्रदेव समस्त पापों से मुक्त हो गए और वैसे महान जैसे पहले थे वैसे हो गए, ठीक हो गए, सारा पाप तब कट गया। अब लोग इस प्रसंग को पढ़ने सुने, इसके लिए इसकी महिमा बता रहे हैं श्री सुखदेव गोस्वामी। जो आप लोगों ने यहां से सुना है छह दिन, इसकी महिमा देखिए। इदं महाख्यालन से सतात्मना प्रक्षालन तीर्थ पदान कीर्तनम भक्ति श्रम भक्त जनांगन महेन्द्र मोक्ष इदम महाख्यान, यह महान आख्यान, यह बहुत महान कथा है, आख्यान है। अशेष पापनम प्रक्षालनम, यह समस्त पापों का प्रक्षालन करने वाला है। कोई कोई जन्म में जो भी पाप हुए हैं, अपराध हुए हैं, सभी पापों को यह केवल शून्य मात्र से समाप्त कर देगा। पाप पाप होते ही रहते हैं या हुए ही हैं जीवन से, अगर पाप नहीं होते तो इस तरह से हम लोग जन्म कैसे लेते इस शरीर में। लेकिन अशेष पापमलन प्रक्षालनम, ये प्रसंग ऐसा है, तीर्थ पदान कीर्तनम, क्योंकि इसमें तीर्थ पाप भगवान विष्णु का के गुणों का वर्णन किया गया है। तीर्थ पदान कीर्तनम, बार बार भगवान की कीर्ति गाई गई है इसमें। और भक्ति क्षय भक्ति उच्छय, इस प्रसंग में भक्ति के उत्कर्ष का वर्णन किया गया है। सब जगह भक्ति ही श्रेष्ठ है, यही वर्णन आ रहा है, भक्त जनम वर्णन। और इस प्रसंग में वृत्रांश इंद्र जैसे भक्त का वर्णन किया गया है, महेंद्र मोक्षम, और यह भी वर्णन किया गया किस तरह महेंद्र इंद्र भगवान ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हुए और वृत्रासुर के पेट से मुक्त हुए, विजयम मरित होता है, और इंद्र के विजय का भी इसमें वर्णन किया गया, इंद्र किस तरह वृत्रासुर को जीत। तो यह महान आख्यान है, सभी पापों को नष्ट करने वाला है, इसमें भगवान विष्णु की कीर्ति का वर्णन है, भक्ति की श्रेष्ठता का निरूपण है, भक्तों का वर्णन है, महेंद्र की मुक्ति का वर्णन है, और महेंद्र के विजय का वर्णन है। इसमें कई बातें छोटे से प्रसंग में है, कठेर व्याख्यान निगम सदा विवाह, विद्वान लोग विद्यमान लोग सदा इस प्रसंग को पढ़ा करते हैं, ये पढ़ना चाहिए। तथे विराख्यान निगम सदा विधा श्रवण तथे पर्वण पर्व इंद्रियम, विद्वान लोग इसे 15 दिन पर जरूर सुनते हैं अथवा पर्व पर्व पर सुनते पढ़ते तो रोज। तथे विराख्यान निगम सदा विधा श्रवण तथे पर्वण पर्व इंद्रियम, पर्व का अर्थ होता है 15वां दिन, पूर्णिमा अमावस्या अथवा कोई भी पर्व त्यौहार, इस अवसर पर विद्वान लोग इसे पढ़ा करते हैं। विद्वान लोग कैसा यह प्रसंग है, धन्यम जसस्यम निकला रमोचनम रिपुंजलम स्वस्तैलम तथा उचम। यह प्रसंग केवल कहने पर सुन लेकर धन्यम यह धन का प्रापक है, इसे धन बढ़ता है, सब प्रकार का धन बढ़ता है, स्पिरिचुअल मटेरियल धन बढ़ता है इस धन्यम केवल सुनने से। जशस्यम ऐसे जश मिलता है, जो व्यक्ति बड़ा बड़ा काम सोचता है काम सब पूरा हो जाता है इस प्रसंग को सुनने पढ़ने का। जशस्य मिथिला विमोचनम और सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। रिपुन जय शत्रु पर विजय प्राप्त होता है, स्वस्थ कल्याण की प्राप्ति होती है। इसको पहले सुनने पर लड़के परीक्षा बहुत अच्छी तरह से पास होते हैं और कन्याओं का विवाह बहुत सुंदर दर से होता है। ये स्वस्ति का यह लक्षण, स्वस्ति इसको कहते हैं कल्याण। यदि विजय के लिए राजा चलता है तो उसे विजय प्राप्त होती है। और स्वस्ति कहते हैं कि कोई व्यक्ति भक्ति में प्रगति चाहता है तो भक्ति में प्रगति होती है सब तरह से, स्वस्थ मन तथा उसमें और यह आयु को बढ़ाता है आयुष्य। इस प्रसंग को पहले सुनने पर व्यक्ति का जीवन लंबा होता है, दीर्घ जीवन होता है, स्वस्थ जीवन होता है। तो आप क्या क्या चाहिए, जो चाहिए प्रसंग इसको पढ़ने से मिल जाएगा, पता इसको पढ़ना चाहिए सुनना चाहिए। सुनो बहुत महान है और इसे सदा पढ़ना चाहिए सुनना चाहिए। हम लोगों का बहुत बड़ा भाग्य है कि हम लोग इसको सुनो पढ़ो यहां, और आप लोगों के संग में भगवान बाबा रास बिहारी ने मुझे मौका दिया, उनकी कृपा से ही उनके गुणों का वर्णन होता है। तो आप इस कथा में आए इसके लिए आपको धन्यवाद है, और भगवान की कृपा आपको सदा प्राप्त रहे, सब तरह से आप सुखी रहें, और इसमें जो जो लिखा गया है सब आपको प्राप्त हो। जय श्री लक्ष्मी, जय श्री राधा।